सम्य ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे जिनेन्द्रचन्दे आयरिय वज्राय साहुगणे वंद्य सम्मदंसन चरितलद्धिं परूहे मोहं। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धि सार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार भाषा टीका जो ढूंढारी भाषा में लिखी है उसका हिंदी अनुवाद देखते हुए हम अभी पृष्ठ संख्या 34 पर आए। 34 लब्धिसार की भूमिका का प्रकरण चल रहा है। हमने एक पद्धति से प्रथम निषेक द्वितीय निषेक में कितना द्रव्य होता है उसकी बात देखी थी। वहां जो टोटल द्रव्य है उसको साधिक डेढ़ गुणानी से भाग देते हैं तो डायरेक्ट पहला निषेक मिल जाता है। पहले निषेक को क्या करेंगे तो चय आता है, दो गुणहानी से भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है। 512 को 16 से भाग दिया तो 32 है, है ना? दो गुणहानी से भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है। तो इस विधि से हम सारी वो संख्या निकाल सकते हैं। अब दूसरी पद्धति बता रहे हैं कि जो टोटल द्रव्य है उसको एक कम अन्य बस राशि से भाग देना। 6300 को 6300 आया वो अंतिम गुणहानि का द्रव्य है, उसको आधे अन्योन्य व्यस्त राशि से गुणा करेंगे तो पहले गुणहानि का द्रव्य आया। अब हमें गुणहानि का टोटल द्रव्य मालूम हुआ, हमें एवरेज निकालना है तो 3200 को हमने 8 से डिवाइड किया, गुणहानि के गच्छ से डिवाइड किया तो 400 हमें एवरेज मिला जिसको मध्यम धन कहते हैं। अब क्या करना है कि दो गुणहानि में से एक कम गुणहानि का आधा माइनस करना। गुणहानि 8 है, एक कम इन्हें 7 हुए, उसका आधा इन्हें 7 द्वितीयांश हुए, वो 16 में से 7 द्वितीयांश माइनस किए 3.5 तो 12.5 रह गए, उससे 400 को भाग देते हैं तो 32 आ गए। तो ये तो चय का प्रमाण मिला वहां पर। यह तक तो हमने देखा था चय का प्रमाण कैसे आया। अब 34 पेज पर नीचे के दो लाइन वहां देखेंगे, यानी हमने पूरे द्रव्य को देखा था मध्यम धन, यानी हमने गुणहानि का द्रव्य निकाला, उसका गुणहानि का मध्यम धन निकाला, मध्यम धन में से चय निकाला। अब उसके आगे की विधि यहाँ बताएंगे। पुनश्च तम दो गुणहानि ना गुणिदे आदि निषेयम, अर्थात उस चय को दो गुणहानि से गुणा करने पर प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। हमने पहली पद्धति में प्रथम निषेक को चय दो गुणहानि से भाग दिया था तो चय आया। अब हमने पहले चय निकाला है तो चय को दो गुणहानि से गुणा करेंगे तो प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। अभी हमारे जो संख्या है उसी को लेके कहते हैं, जैसे 32 को, 32 हमारा यहाँ का चय है, पहले गुणहानि का चय 32 है, उसको 16 ने दो गुणहानि से गुणा करने पर 512 आते हैं। पुनश्च तत्व विशेष हीनकमम, उसके पश्चात द्वितीयादि निषेकों में विशेष अर्थात चय का प्रमाण उससे हीन क्रम जानना। 512 में से एक चय कम करो 480 आते हैं, वो द्वितीय निषेक, उसमें से और एक चय कम कर दो 448 आते हैं तृतीय निषेक, एक एक चय मात्र घटते क्रम से जानना। इसका अर्थ ख्याल में आता है जीतू भाई? वहां एक अधिक गुणहानि से चय को गुणा करने पर अंत निषेक का प्रमाण आता है। देखो इसको जरा देखते अपनी पद्धति से देखेंगे, ऊपर एक एक चय कम हो रहा है, हमारे पास गुणहानि में आठ निषेक है। पहला निषेक कैसे आया? दो छह मल्टीप्लाइड बाय दो गुणहानि, यानी सोलह छह, अपनी भाषा में सोलह छह। टोटल संख्या कितनी? सोलह मल्टीप्लाइड बाय छह, यानी सोलह छह। पांच सौ बारह कितने? सोलह बार बत्तीस लिए, इसमें से एक छह घटाना, पंद्रह छह आ गए। समझ में आती बात? तो यहाँ चौदह, तो यहाँ तेरह, बारह, ग्यारह, दस और नौ, यानी नौ छह। पहला निषेक निकालना है तो दो गुणहानि से गुणा करो छह को। अंतिम निषेक निकालना है तो गुणहानि प्लस से गुणा करो, गुणहानि प्लस वन से गुणा करो। अंतिम अंतिम डायरेक्ट मिला यहाँ सेकंड निषेक। पहला है सोलह मल्टीप्लाइड बाय छह, यानी सोलह बार छह पंद्रह, यानी एक छह घटा, दो छह घटे, तीन छह घटे, टोटल छह कितने घटे?
सात
छह घटे। देखो आठ निषेक है, पहला निषेक यहाँ रखा, एक दूसरे निषेक में एक छह घटा, यहाँ दो छह घटे, तीन छह घटे, आठवें में कितने छह घटे? तो सात छह घटे। सोलह छह में से सात छह घटे तो नौ छह बाकी रहे। यानी हमें डायरेक्ट अगर छह मालूम है, गुणहानि का अंतिम निषेक निकालना है तो छह मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस गुणहानि, यानी गुणहानि प्लस वन। गुणहानि हमारी आठ है तो हम नौ से गुणा करेंगे। पहले गुणहानि का छह की वैल्यू यहाँ डालना, दूसरे गुणहानि में वहां का छह डालना, तो वहां की वैल्यू आ जाएगी। ये पहली गुणहानि हुई, दूसरी गुणहानि में छह आधा हुआ, यानी दूसरी गुणहानि का पहला निषेक सोलह गुणा सोलह दो सौ छप्पन आएगा, और दूसरे गुणहानि का अंतिम निषेक नौ गुणा सोलह एक सौ चौवालीस। ख्याल में यही बात? अब आगे देखो क्या, ये दूसरा निषेक, सेकंड निषेक टू फोर एटी वाला है ना, वो टू फोर्टी जो है ना, तो पंद्रह गुना छह, वहां का छह कितना है? सोलह। हाँ पंद्रह गुना सोलह, ऐसे ऊपर तक एक सौ चवालीस कैसे आया? नौ गुना सोलह, तीसरे गुणहानि में छह उससे आधा हुआ, छह आठ होगा, तो पहला निषेक कितना होगा? सोलह गुना आठ एक सौ अट्ठाईस, और अंतिम निषेक वहां का छह आठ है उसको नौ से गुणा करो, बहत्तर हो जाता। ये हमने कर्मकांड में अर्थ संदृष्टि में देखा था, परंतु यह तो काल्पनिक संख्या और आसान हो जाती है। देखो पैंतीस पृष्ठ पर देख रहे हैं हम, तीसरी लाइन, वहां एक अधिक गुणहानि से, यानी अपने यहां नौ से, गुणहानि अपने आठ है ना, तो नौ से हम करेंगे, छह को गुणा करने पर अंत निषेक का प्रमाण आता है। जिस गुणहानि की बात होती है वहां के छह से गुणा करना, जैसे नौ से बत्तीस को गुणा करने पर दो सौ अट्ठासी होते हैं। ये क्या हुआ? पहले गुणहानि का अंतिम निषेक हुआ। इसी तरह द्वितीयादि गुणहानियों के द्रव्य को स्थापित करके, अब पहले गुणहानि का टोटल द्रव्य बत्तीस सौ है, दूसरे गुणहानि का टोटल द्रव्य सोलह सौ, उसका मध्यम धन कितना होगा? एवरेज 200, क्योंकि 1600 डिवाइडेड बाय 8, उसको वो साढ़े बारह से भाग देना, मेथड तो वही है, साढ़े बारह ने दो पच्चीस सौ से गुना करना, पच्चीस साठ दो से यार दो सोलह, सोलह वहां का चय आया, सोलह चय होगा, उससे दो सोलह से सोलह दो गुणहानि से गुना करो, दो सौ छप्पन पहला निषेक, सोलह चय है उसको नौ से गुना करो, एक सौ चौवालीस अंतिम निषेक। इसी तरह द्वितीयादि गुणहानियों के द्रव्य को स्थापित करके वहां निषेकों के द्रव्य का प्रमाण लाना, पद्धति यही होगी सर्वत्र। द्वितीयादि गुणहानियों में पूर्व गुणहानि से द्रव्य चय और निषेकों का प्रमाण क्रम से आधा आधा जानना, निषेकों का प्रमाण यानी निषेकों में परमाणुओं का प्रमाण, द्रव्य का प्रमाण, निषेकों में द्रव्य का। नहीं तो निषेकों का यानी वहां आठ के बदले चार ही निषेक होते ऐसा नहीं समझना। इस तरह विधान कहा, ये समझ में है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है समय प्रबद्ध का, उसकी बात यहां बताई। अब अनुभाग रचना में बताएंगे। अनुभाग रचना में भी ऐसा ही विधान जानना। विशेष इतना है कि यहां द्रव्यादि का प्रमाण जैसा पाया जाता है वैसा जानना। वहां हमने निषेकों में देखा था, यहां वर्गणा में करना, क्योंकि यहां की जो डेढ़ गुणा नहीं होगी, टोटल द्रव्य को भाग देंगे साधिक से, तो पहली वर्गणा के परमाणुओं का प्रमाण आएगा, क्योंकि वो अनंतों में है ना, तो यह वर्गणा में द्रव्य भी कम होगा, अनंत का भाग होगा यह। अनुभागों में तो अनंत स्पर्धक होते हैं ना, अनंत का नहीं 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 पांचवा भाग, 512 किया था हमने, नहीं 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 देखो यहाँ क्या है, अभी हमने ये जो सभी देखे ये कहाँ देखे, तो निषेकों में देखे। अब वर्गणा में कितनी होते, अनंत वर्गणाएं होती है। द्रव्य तो वही है जो इतना निषेकों में था, परंतु अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने वर्गणाओं में होता है अनुभाग की अपेक्षा से, एक समय प्रबद्ध होता
है।
हाँ जगन्य वर्गणा नीचे, परंतु उसमें परमाणु ज्यादा है, ये ऐसे गोपुच्छाकारी रचना वहां पर भी होगी, और वहां की गुणानी भी कि उसका प्रमाण अलग है, उसका अनंतों में है, उस हिसाब से वैसे ही रचना वैसी होगी। ये जो टर्मिनोलॉजी अभी हमने देखी, ये जो हमने देखा अन्योन्याभ्यासी से भाग देना, ये सभी हाँ ये फॉर्मूला वैसा का वैसा ही लागू होगा, केवल वहां जो प्रमाण है वो अलग अलग होगा।
कल आपने जो उदाहरण दिया था उसके आधार से
कौन सा
500 को 5 से भाग दिया है, 400 होता है, 400 स्पर्धक नाश होते हैं।
हाँ वो अनुभाग कांडक घात में बताए, कांडक घात में, यहाँ कांडक घात की बात नहीं, यहाँ ये रचना होती ना बंद के समय, हाँ रेंज होती उस समय की बात। प्रत्येक निषेक में ऐसी अनुभाग रचना होगी, प्रत्येक निषेक में, हाँ वो कांडक की बात सही है। ये पूरे स्थिति में नीचे से ऊपर तक ऐसी रचना है, और अनुभाग की अपेक्षा अगर रचना देखनी है तो ये तीव्र अनुभाग हम यहाँ देखेंगे सबका, और ये मंद अनुभाग, हमें टोटल द्रव्यों का देखना है। अब उसकी स्थिति कौन सी है वो अभी कंसीडर मत करो, ये यहाँ पढ़ाए कि यहाँ पढ़ाए मत सोचो, अब वो अनुभाग कैसे है, तो ये तीव्र अनुभाग वाले और ये मंद अनुभाग वाले, मात्र अनुभाग की रचना, सभी परमाणुओं की हमने इस तरह से रचना की, तो उसको हम कहेंगे पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, ऊपर द्रव्य घटता चला जाता है, जैसे निषेकों में रचना हुई थी वैसे ही वर्गणाओं में होती है। वर्गणा कहेंगे किसको, तो एक एक अविभाग प्रति छेद ऊपर बढ़ता चला जाता है, ख्याल में ही बात है। यानी ये जो गणित की जो पद्धति है, विधान है, वो तो वैसा का वैसा होगा। नहीं नहीं निकाचित विकाचित वो भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं होता है। हाँ वर्गणा जो है सभी सभी कर्मों में पड़ी, उसके अनुभाग को बताने वाली वो वर्गणा होती है। तो कौन सी वर्गणा में कितने परमाणु होते हैं वो हमें इस पद्धति से निकाल सकते हैं, ये बात है। यानी मंद अनुभाग वाले मैक्सिमम परमाणु हो गए, तीव्र अनुभाग वाले मिनिमम परमाणु, परंतु वो नीचे के ऊपर है वो मत सोचो, वो सर्वत्र पड़ेगा। हाँ जी
जैसी का चीज जो धर्म है ना भाई, वो हर प्रकृति में होंगे।
यानी कुछ परमाणु ऊपर नीचे नहीं जाते, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, उस निषेक में से एक निषेक में बहुत अनंत परमाणु है, ये निषेक की अपेक्षा बात करते हैं, स्थिति की अपेक्षा, उसमें से मान लेते कुछ परमाणु अपनी जगह छोड़ेगी नहीं, बाकी इतने सारे परमाणु हुए, कुछ नीचे जाएंगे कि ऊपर आ जाएंगे, कोई पर प्रकृति रूप संक्रमण होंगे, ये अपने रूप से पड़े हैं बस, क्रम से नीचे 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 करके उदय में आएंगे, बस इतनी बात।
आयु में भी होते
आप देखो अभी आप शांति से सुनो, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, ये तो भूमिका बांध रहे
हैं।
हाँ बिल्कुल, जब जब विषय आएगा तब, इसलिए हम ज्यादा आपको समझाने की कोशिश नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखो अभी अनुभाग की बात हम फिर पढ़ते हैं, अनुभाग रचना में भी ऐसा ही विधान जानना, फॉर्मूला ऐसा ही लगाना वहाँ पर भी। विशेष इतना है, यहाँ द्रव्यादि का प्रमाण जैसा पाया जाता है वैसा जानना। द्रव्यादि में द्रव्य स्थिति गुणहानि नाना गुणहानि वो पहले बता चुके कहाँ कितना होता है। वहां जैसे निषेकों में परमाणुओं का प्रमाण लाया, वहां यानी निषेक रचना में स्थिति रचना में, वैसे यहाँ यहाँ यानी अनुभाग रचना में वर्गणाओं में परमाणुओं का प्रमाण लाना, ये बात क्या क्लियर हो गई। ऐसे ही देने योग्य द्रव्य में विधान जानना, देने योग्य का अर्थ है जहां भी अपकर्षण होता है अनुभाग का, तो वो अधिक अनुभाग वाले जो परमाणु वो नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में वर्गणाओं में दिए जाते हैं, तो वहां भी ऐसा ही विधान जानना। विशेष इतना है, यहाँ द्रव्यादिक का प्रमाण जैसे पाया जाता है वैसे जानना। पूर्वोक्त प्रकार से वहां निषेकों का प्रमाण लाकर प्रथमादि निषेकों का जो प्रमाण आता है उतना द्रव्य पहले जिनमें द्रव्य देना है ऐसे सत्ता के प्रथमादि निषेकों में इसको मिला देना। यही बात स्थिति की बात है, दिए जाने वाले द्रव्य की बात है। वहां भी जो ऊपर से द्रव्य दिया जाता है जहां चय घटते क्रम से देते हैं वहां ऐसे ही फिर दोबारा ये सब रचना हो, यानी एक्स्ट्रा द्रव्य एडिशनल कितना दिया उसमें भी चय घटते क्रम से रचना हो। ओरिजिनल निषेकों में तो है ही है, अपकर्षित द्रव्य में भी दिए जाने वाले द्रव्य में ऐसी रचना हो। आगे पढ़ेंगे, जहां द्रव्य को अल्प निषेकों में ही देना हो वहां गुणहानि रचना तो संभव नहीं है, तो वहां द्रव्य कैसे देना वह कहते हैं। क्या कहते हैं? एक गुणहानि का प्रमाण कितना है? तो कहते पल्ले के असंख्यात विभाग। अब हम देखते अपकर्षित द्रव्य उदयावली में दिया जाता है, ये उदयावली के निषेक, और उसमें चय घटते क्रम से और थोड़ा सा द्रव्य दिया जाएगा, तो एक गुणहानि तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण बड़ी होती है, और यहाँ अवली मात्र निषेक है, तो यहाँ गुणहानि आधे आधे तो हो गए नहीं, थोड़े थोड़े घटते चले जाएंगे, पूरी गुणहानि रूप रचना नहीं होगी। यही कहते हैं कि जहां अल्प निषेकों में देना है वहां गुणहानि रचना तो संभव नहीं है, तो वहां द्रव्य कैसे देना वह कहते हैं। जैसे एक गुणहानि के निषेकों में द्रव्य का प्रमाण लाने का विधान कहा था, वैसे ही अद्धानेन संवधने खंडिदे मध्यम धनम आगच्छति इत्यादि विधान से वहां प्रथमादि निषेकों का प्रमाण लाना। क्या कहते हैं? ये इतना द्रव्य यहाँ एडिशनल दिया तो वहां इसमें कितना दिया, पहले निषेक में दिया हुआ द्रव्य कितना है, तो कहते हैं इसका भी एवरेज निकालना। यहाँ कितना टोटल द्रव्य दिया है कितने निषेकों में आवली प्रमाण में, तो उससे भाग देंगे हम, वहां गुणहानि से भाग देते थे, यहाँ जितने निषेक है उससे भाग देंगे तो हमें एवरेज मिलेगा, है ना। विशेष इतना है, यहाँ जितने निषेकों में द्रव्य देना हो उस प्रमाण गच्छ स्थापना, और जितना द्रव्य वहां देने योग्य हो उस प्रमाण द्रव्य स्थापना। मान लेते आवली प्रमाण निषेकों में देना है, तो वहां उदयावली में जितना द्रव्य दिया उसको हम द्रव्य कहेंगे, आवली प्रमाण निषेकों में दिया है उसको गच्छ कहेंगे, गुणहानि तो नहीं कैसे, गुणहानि तो बहुत बड़ी होती है, तो ये गच्छ कहा हमने। ऐसा करने पर जो प्रथमादि निषेकों का प्रमाण आता है उतने द्रव्य को विवक्षित के पहले जो सत्तारूप निषेक पाए जाते हैं उनमें मिला देना। क्या कहना चाहते हैं? विवक्षित के नहीं, यहाँ हमारी बात, ये सत्तारूप निषेक पहले था ही, हमने जितना द्रव्य दिया था चय घटते क्रम से दिया है, तो ये द्रव्य और उसका फिर एवरेज निकाला, फिर एवरेज के बाद वो जो पहले निषेक का प्रमाण निकालने की बात है, तो इतना द्रव्य यहाँ के पहले निषेक में मिला, इससे इसका चय अलग होगा, मूल निषेकों का चय अलग है और यहाँ दिए जाने वाले द्रव्य का वो चय उसके अपने प्रमाण से अलग होगा। गुणहानि का प्रमाण तो सर्वत्र वही का वही होगा। जहां उदयावली में द्रव्य देना हो अथवा अल्प स्थिति रह जाने पर उपरीतन स्थिति में द्रव्य देना हो वहां तथा अन्यत्र ऐसा विधान जानना। ये बात कब हो सकती है? तो जब उदयावली में देना है तो आवली मात्र निषेक है। कभी कभी ऐसे होगा ना, अभी फिर रहा है सारे कर्म निर्जरा रूप हो रहे, वहां गुणश्रेणी उदयादि भी हो जाएगी, गुणश्रेणी भी हुई और उपरीतन स्थिति में अभी बहुत थोड़ी निषेक बाकी, तो यहाँ भी जो चय घटते क्रम से दिए है यहाँ गुणहानि जितने तो है नहीं है, बहुत अल्प रह गए हैं, तो वहां भी ये जो एक्स्ट्रा दिया है उसका प्रमाण कैसे निकालना, यही मेथड है। जितना द्रव्य दिया वो द्रव्य कहे गए और जिन जितने निषेकों में दिया उसको क्या कहेंगे हम? गच्छ कहेंगे, गच्छ कहेंगे। गच्छ से भाग देने पर मध्यम धन आया और मध्यम धन को वो जो कुछ 12.5 से हमने जो दे निकाला था गुणहानि के प्रमाण से उसके उससे भाग देना तो यहाँ का प्रमाण मिल जाएगा। यानी दिए जाने वाले द्रव्य में भी ऐसी बात चय घटते क्रम से दिया जाए। अब नीचे के पैराग्राफ 35 पृष्ठ पर गुणश्रेणी आयाम आदि में द्रव्य देना हो वहां विधान कहते। अब गुणश्रेणी में कैसे दिया जाता है उसकी बात देखो। गुणश्रेणी का अर्थ हमने देखा था गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रचना, पंक्ति रूप रचना, इस तरह से असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा दिया जाने वाले द्रव्य प्रक्षेप योगो धत मिश्र पिंड प्रक्षेप का नाम गुण को भवेद इति। ये तो करण सूत्र है, ये फॉर्मूला है मूल प्राकृत में, उसका अर्थ बताएंगे। उसके अनुसार विधान जानना वह कहते हैं। जैसे सिर के द्रव्य का नाम तो मिश्र पिंड है। देखो देखो सिर यानी हम जो पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप में कोई धंधा करते हैं तो जो टोटल द्रव्य है ना तो उसको सिर का द्रव्य कहेंगे। तो हम कहेंगे ना नहीं नहीं हाँ अच्छा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें कोई लाभ मिला है तो कैसे बांटेंगे? तो हमने कहीं किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 50% है, प्रोपोर्शनेट है। तो सिर यानी टोटल द्रव्य, सिर के द्रव्य का नाम मिश्र पिंड है, उनके विश्वा का नाम प्रक्षेप है। विश्वा ने हिस्सा, हिस्सा ने हम कहेंगे अपनी भाषा में परसेंटेज, कितना हिस्सा है हम के पहले के जमाने में रुपए का है, इसका 4 आना इसका 8 आना ऐसा कहेंगे, तो उसको कहेंगे यहाँ विश्वा या हिस्सा, मैंने अपनी भाषा में हिस्सा लिख दिया। प्रक्षेपों का जोड़ देकर उसका भाग मिश्र पिंड को देने पर एक भाग का प्रमाण आता है। अब हम अपनी भाषा में देखेंगे, अभी हम देखेंगे कोई हमने पार्टनरशिप की, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 50% है, कितने रह गए अभी और 35 रहे, ये हो गए। अभी क्या करना है? तो ये प्रक्षेप हो गए, इनका नहीं नहीं इनको जोड़ देना, जोड़ देने पर कितना हुआ? 100 हो गया। अभी मान लेते हमें कुछ लाभ हुआ, 10,000 का लाभ हुआ। अब ये 10,000 कैसे बांटेंगे? तो एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, ये जो प्रक्षेपकों का जो जोड़ है 100 उससे इसको भाग देंगे तो ये गए। तो एक भाग की वैल्यू 100 है, तो जिसके 5 है उसके खाते में कितने मिलेंगे? 500। दस वाले के लिए 1000 मिलेंगे, 50 वाले के लिए 50,000 500 5,000 मिलेंगे और इसको 3500 मिलेंगे। यही पद्धति है। क्या पढ़ा हमने अभी? प्रक्षेपकों प्रक्षेपों का जोड़ देना। यहाँ परसेंटेज में करते तो आसान हो जाता। यदि ऐसे एट रैंडम कुछ होगी, ऐसी फिगर होगी, किसी का एक है, किसी का चार है, किसी के 16 है, किसी के वो 64 है, मान लेते ऐसा होता तो टोटल 85 आती। तो जितनी संख्या हमें मिलने वाली, हम मान लेते कोई 85,000 ले लो, तो उसको हम 85 से भाग दें, तो एक भाग की वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर वहाँ अपना अपना जो है, किसी का एक है तो उससे गुणा करेंगे, एक का, चार का, 16 का, 64 का। पद्धति तो यही है, परसेंटेज में समझना आसान है, इसलिए उसकी बात। देखो अभी प्रक्षेपों का जोड़ देकर उसका भाग मिश्र पिंड को देने पर एक भाग का प्रमाण आता है, वह प्रक्षेपक है जो अपने अपने हिस्से का गुणकार होता है। हम लेंगे ना
प्रक्षेपक माने
एक भाग, यानी जो टोटल मिलना है, जो टोटल द्रव्य देने योग्य है, उसमें से किसके खाते में कितना जाएगा, तो उसकी टोटल हमने निकाली। जैसे हमने ये दूसरा गणित था ना, 85 हमने निकाला, तो 85 में तो एक एक की वैल्यू एक मान लेते, फिर तो एक वाले को एक एक भाग की एक वैल्यू मान लेंगे, तो एक मिलेगा, चार मिलेगा, 64 मिलेगा, 25 इस तरह से 16 मिलेगी किसी को। इनको परस्पर गुणा करके जो जो प्रमाण, यानी गुणकार आए ना, हमें गुणकार कौन सा मिला, जैसे हमारे पास 10 या कितने 10,000 मिले थे और प्रक्षेपों की टोटल 100 मिली थी, उससे भाग देने पर एक भाग की वैल्यू है 100, ये 100 गुणकार हुआ, अपने अपने परसेंटेज को उससे गुणा करने पर हमें टोटल उसको कितना द्रव्य देना, इसका हमें हिसाब मिलता है। यही बात यहाँ पर, तो इनको परस्पर गुणा करके, यानी अपने अपना जो प्रक्षेप है उसको प्रक्षेपक से गुणा करेंगे, अपना अपना हिस्से का गुणकार है, तो जो प्रमाण आता है वह अपने अपने हिस्से के स्वामी, जो सीरे ने भागीदार या भागधारक, उनका द्रव्य जानना। पहले हमने देखा सीरी का द्रव्य, सीर के द्रव्य का नाम, सीरे ने जो टोटल द्रव्य जो है, जो भागधारकों को हम देंगे, तो इसी पद्धति से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, किसके कितने हैं। यहाँ सिर का द्रव्य मिश्र पिंड 1700, ये समझाया सीरियों के, सीरिय ने वो भागीदार विश्वे, उनके जो अलग अलग हिस्से, एक यानी विश्व, अनेक यानी विश्वे, कौन कौन से है भागीदारों के, जो हिस्से कैसे कैसे है, एक का एक है, दूसरे के चार है, तीसरे के 16 है, चौथे के 64 है, यही उदाहरण लिया था ना मैंने, यानी उनके इतने इतने भाग प्रमाण, उनकी अपनी अपनी वो भागीदारी, ये हुए प्रक्षेप। प्रक्षेप एक का एक है, चार है, 16 है, 64 है, चार अलग अलग है भागीदार है, चार अलग अलग, एक की कितनी है भागीदारी, तो एक उसका विश्वा एक का, इनका जोड़ हुआ 85। प्रक्षेप हुए ना ये पहले बताए वो सारे, उनकी जो उनका 85 वो जोड़, प्रक्षेपों का जोड़, एक चार 16 64, ये प्रक्षेप हुए हमारी भाषा में, परसेंटेज उनके जो कुछ थे, हम तो 100 में से करते हैं इसलिए परसेंटेज का।
प्रक्षेपक एक ही है,
प्रक्षेपक एक आया, उसका भाग मिश्र पिंड को देने पर 20 आए, उससे अपने अपने प्रक्षेपों, यानी एक गुणकार है, प्रक्षेपक है, प्रक्षेपक 20 आया, क्योंकि मिश्र पिंड हमारा 1700 है, 1700 मिले और उनको इन सब में बांटना है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी है 20, तो अपना अपना जो प्रक्षेप है उसको गुणा करें, जिसका एक है उसको 20 से गुणा करें, उसको तो 20 मिले, तो ये जो जोड़ 85 है उसका भाग मिश्र पिंड को देने पर 20 आए, उससे अपने अपने प्रक्षेपों अर्थात विश्वों को गुणा करने पर, यानी अपने अपने हिस्से को गुणा करने पर पहले के 20 दूसरे के 80, क्योंकि उसके चार भाग थे तो 4 × 20 = 80 हो गए, तीसरे के 320 क्योंकि उसके तो 16 थे, 16 × 20 हुए, और चौथे के 1280 क्योंकि उसके 64 थे, उसको हमने 20 से गुणा किया, तो इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी तरह ये तो उदाहरण हुआ, गुणश्रेणी के आयाम में, गुणश्रेणी का आयाम यानी कितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से दिया जाता है उसको कहेंगे गुणश्रेणी का आयाम, जो यथायोग्य अंतर्मूर्त होता है। तो जितना द्रव्य देना हो वह तो मिश्र पिंड है, हमने क्या देखा अपकर्षित द्रव्य आया नीचे, कुछ भाग उदयावली में गया, कुछ भाग गुणश्रेणी में दिया, तो जितना द्रव्य गुणश्रेणी में दिया जाएगा उसको हम मिश्र पिंड कहेंगे। ये टोटल गुणश्रेणी के निषेकों में मिलकर इतना द्रव्य दिया, जैसे हमने 85 देखा था, वहां गुणश्रेणी आयाम के प्रथम समय की एक शलाका, प्रथम समय के ने यह है गुणश्रेणी आयाम, पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, चौथा, ये गुणश्रेणी के निषेक है, उसके नीचे उदयावली हो या नहीं हो या उससे हमें कंसर्न नहीं अभी, गुणश्रेणी के इतने निषेक है। तो कहते हैं यहां पर पहले समय की एक शलाका, द्वितीय समय की उससे असंख्यात गुणा शलाका, शलाका यानी अभी उसके उतने भाग प्रमाण है, यहां जितना देंगे उससे असंख्यात गुणा दूसरे निषेक में देंगे द्रव्य, तृतीय समय की उससे भी असंख्यात गुणा, और चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुणा। तो ये जो असंख्यात गुणा मान लेते हैं x है, तो यहाँ असंख्यात x हो जाएंगे, यहाँ असंख्यात असंख्यात x हो जाएंगे, यहाँ असंख्यात 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 x हो जाएंगे, ये क्या हुए प्रक्षेप हुए, इन सबका जोड़ देना। अभी हम ये असंख्यात वगैरह भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ 1, 4, 16, 64 लिखेंगे, असंख्यात के बदले हम 4 गुना मानेंगे केवल समझाने के लिए, परंतु मूल में वो असंख्यात गुणा है। ये दिया जाने वाले द्रव्य की बात है, ऊपर से जो दिया जाता है, ओरिजिनल निषेक यहाँ थे ही, उसमें एक्स्ट्रा जो देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल निषेक इस तरह से थे यहाँ पर, और उसमें इस तरह से असंख्यात गुणा असंख्यात दिए देकर ये ऐसा दिखाई देगा, इसलिए इसको गुणश्रेणी कहते हैं। दिए जाने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा, हाँ 1700 दिया, हाँ तो कहाँ कितना दिया जाएगा उसको दे। तो यहाँ जो शलाका था कहा था उसी को प्रक्षेप कहेंगे। इनके जोड़ने पर जो प्रमाण आता है, अभी हमने 85 निकाला अपने गणित में, वैसे तो वहां तो असंख्यातों में होगा, एक बार असंख्यात उससे असंख्यात उससे असंख्यात गुना कितने बार हुआ, तो ये जो उनको जोड़ने पर जो प्रमाण आता है उसका भाग उस सर्व द्रव्य को देने पर जो प्रमाण होता है उसको हम प्रक्षेपक कहेंगे। जैसे अपने ऊपर के गणित में हमने 1700 को भाग दिया था तो 20 आए थे, उसके द्वारा अपनी अपनी शलाका के प्रमाण को गुणा करना, शलाका कहो या प्रक्षेप कहो, अपने अपने प्रक्षेप को गुणा करना, अपने अपने हिस्से को गुणा करना, प्रमाण को गुणा करने पर गुणश्रेणी आयाम के प्रथमादि समय संबंधी निषेकों में द्रव्य देने का प्रमाण आता है। यानी वो टोटल कितना द्रव्य दिया, अभी आपने कहा 1700, तो उसमें से पहले समय में कितना दिया 20 दिया, दूसरे समय वाले को कितना दिया 80 दिया, इस तरह से। इसी कहा गया इतना इतना द्रव्य गुणश्रेणी आयाम के प्रथमादि निषेकों में मिलाते हैं, प्रथमादि यानी पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इस तरह से। ये तो गुणश्रेणी में दिए जाने वाले द्रव्य का प्रमाण बताया। ऐसे ही गुण संक्रमण विधान जानना। गुण संक्रमण में भी ऐसा ही विधान है, गुण संक्रमण यानी गुणित प्रमाण में संक्रमण होना, पर प्रकृति रूप हो जाना। पहले समय में जितने परमाणु पर प्रकृति रूप होते हैं, दूसरे समय में उससे असंख्यात बने, तीसरे समय में उससे असंख्यात बने। यहाँ गुण संक्रमण द्वारा अन्य प्रकृति रूप परिणमाने योग्य जो सर्व द्रव्य, क्योंकि पूरे द्रव्य में से कितना द्रव्य संक्रमित होगा तो कहेंगे वो गुण संक्रमण भागार से भाग देने पर जो आता है उतना होगा। तो ये पहले समय में उसको मिश्र पिंड कहेंगे, और गुण संक्रमण काल के प्रथमादि समय संबंधी, गुण संक्रमण का जितना समय तक गुण संक्रमण चलेगा, मान लेते अंतर्मुख चलेगा, समझने के लिए कहेंगे 10 समय तक चलेगा, तो पहले समय में जितना द्रव्य संक्रमित हुआ दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना इस तरह से। तो कहते गुण संक्रमण काल के प्रथमादि समय संबंधी एक आदि क्रम से असंख्यात गुणी शलाका वह प्रक्षेप है, वहां पर भी असंख्यात गुणा है उसी को प्रक्षेप कहेंगे। इनके जोड़ का भाग मिश्र पिंड को देकर, यानी इनको जोड़ देना और जो संख्या आएगी उसका भाग मिश्र पिंड को देंगे। लब्ध द्वारा यानी जो संख्या आएगी, यानी एक भाग की जितनी वैल्यू आएगी अपनी अपनी शलाका को गुणा करने पर, हमने उसको विश्वा कहा था ना, अपने अपने हिस्से को गुणा करने पर गुण संक्रमण काल के प्रथमादि समयों में अन्य प्रकृति रूप परिणमाने योग्य द्रव्य का प्रमाण आता है। पहले समय में तो गुण संक्रमण भागार से भाग दिया था, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, फिर उससे असंख्यात गुणा, फिर उससे असंख्यात, ये चलता रहेगा। इसी प्रकार अन्यत्र भी यथासंभव मिश्रपिंड ने टोटल देने योग्य द्रव्य या संक्रमित होने योग्य द्रव्य और प्रक्षेपों का प्रमाण जानकर जैसे जहां पाया जाए वैसे वहां जानना, इस प्रकार द्रव्य देने आदि संबंधी विधान कहा। अभी तो केवल हम इमेजिन कर रहे हैं, जब उसका कौन से काल में या कहां पर क्या होता है, क्षपणा में क्या होता है, प्रथमोपशम में क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है, तब उसकी चर्चा अधिक समझ में आवे। अभी तो केवल हम इमेजिन कर रहे क्या क्या होता होगा। अब सत्ता में जो निषेक पाए जाते हैं उनके द्रव्य जानने का विधान कहते हैं। सत्ता में जो कर्म पड़े हैं तो वहां कितना द्रव्य कहां दिया है या कहां पाया जाता है उसकी बात यहां हम देखेंगे। विवक्षित किसी एक समय में सत्ता रूप कर्म परमाणुओं का जो द्रव्य है वहां स्थिति सत्व का प्रथम समय वर्तमान है। देखो क्या अभी यह बात किसकी चल रही है, बंदे हुए की नहीं और देने वाले की भी नहीं। सत्ता में जो कोई द्रव्य पड़ा है उसका एक पहला निषेक, सत्ता का पहला निषेक। ये सत्ता में हर समय बनने वाले परमाणु ऐड होते हैं और खिरने वाले उसमें से निकल जाते हैं। ये सत्ता रूप परमाणु भी इस तरह से त्रिकोण रूप जिसको हम कहेंगे ना, ऐसी उनकी भी रचना होगी। ये सत्ता का स्थिति सत्व का पहला निषेक, ये सर्वत्र ऊपर ऐसा इस तरह से, जैसे हमने देखा था कि इसमें कितने परमाणु है तो 6300 है, सब मिलकर अलग अलग समयों में बंधे हुए उनकी टोटल एक समय प्रबद्ध प्रमाण। इसमें वो 512 वाला कम है, इसमें 512 और 480 दो निषेक कम है, इस तरह से ऊपर तक चले जाए। तो यहाँ क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे पहले। तो कहते हैं स्थिति सत्व का प्रथम समय वर्तमान है, वर्तमान यानी यहाँ जो ये नीचे वाला वर्तमान में वो उदय रूप चल रहा है, उसमें उदय आने योग्य जो द्रव्य वह प्रथम निषेक का द्रव्य है, उसको सत्ता के या स्थिति सत्व जो है उसका प्रथम समय का द्रव्य, ये प्रथम निषेक है सत्ता का प्रथम निषेक। पहले जो हमने 512 देखा था वो समय प्रबद्ध का पहला निषेक देखा, बंधने वाले का पहला निषेक, स्थिति बंध का नहीं, स्थिति बंध में वो 512 लिया था, हाँ स्थिति बंध का, हाँ 512 है वो स्थिति बंध का पहला निश्चय, और ये स्थिति सत्व का भी जो उदय रूप होकर खिर रहा है, तो किसी का 512 वाला इसमें, किसी को 480 वाला है, कभी कभी बंधा हुआ वो 448 वाला, ये सब इसमें से पड़े हैं 9 तक के, क्योंकि किसी का एक निश्चय खिर गया, किसी का सभी निश्चय खिर गया, तो कुछ का कुछ नहीं है, जिसका एक ही बाकी उसका 9 है, जिसके 2 निश्चय बाकी उसके 9 और 10 सत्ता में पड़े, ये सर ये सब मिलकर कितने हैं, तो 6300 प्रमाण एक समय प्रबद्ध प्रमाण। इसके ऊपर का कितना है, तो किसी का वो 512 का गल गया है तो उसके ये यहाँ 480 यानी 512 कम है इसमें से, 6300 माइनस 512 है। इस तरह से ऊपर ऊपर एक एक निशय, पहला निशय कम, दूसरा निशय कम, तीसरा निशय कम, इस तरह से दूसरा का मैंने पहला और दूसरा नहीं है, ऊपर पहला दूसरा तीसरा नहीं है, इस तरह से ऊपर तक समझना। देखो उसका प्रमाण तो संपूर्ण समय प्रबद्ध मात्र है, क्यों वह कहते हैं, ये पहले भी हमने बहुत बार इसको देखा है, जीव कांड में भी देखा, कर्म कांड में भी देखा, मूल पुस्तक में भी और अर्थ संदृष्टि में भी, अब फिर लब्धिसार में भी बता रहे हैं। पहले अभी उसका कारण बताते हैं, पहले जो समय समय प्रति यानी एवरी समय प्रति समय समय प्रबद्ध बांधे हैं, बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते हैं, उनमें जिस समय प्रबद्ध का एक भी निषेक पहले गल नहीं गया हो, उसका तो प्रथम निषेक इस समय में उदय होने योग्य है, उसकी आबादा कंप्लीट हुई और अभी उसका पहला निषेक उदय रूप होने वाला है। जिसका एक निषेक पहले गल गया है उसका द्वितीय निषेक इस समय में उदय होने योग्य है, यानी किसी का 512 वाला निषेक उदय रूप है, किसी का 480 वाला है, 448 वाला है, इसी क्रम से जिसके एक निषेक बिना यानी अंतिम 9 परमाणु का निषेक है ना, उसको छोड़कर अवशेष सर्व निषेक पहले गल गए हैं, उसका अंत निषेक इस समय में उदय होने योग्य है। अलग अलग समयों में बंधे हुए का एक 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 निषेक उदय रूप है, इस तरह एक एक समय प्रबद्ध का एक एक निषेक मिलकर इस विवक्षित समय में उदय आने योग्य संपूर्ण समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य हुआ, हमारे उदाहरण में 6300 प्रमाण हो गया उसमें, वह सत्ता का प्रथम निषेक है। देखो ये सत्ता का प्रथम निषेक और बंध का पहला प्रथम निषेक इसमें डिफरेंस, ये सब मिलकर 6300 परमाणु हुए हैं इसमें। जैसे हाँ यहाँ बता दे, जैसे एक समय प्रबद्ध का 512, दूसरे का 480 इत्यादि निषेकों का सर्व द्रव्य मिलकर 6300 होते हैं। ये तो पहला निषेक पूर्ण 6300 परमाणुओं का है, ये बात ख्याल में आई ना। अब सत्ता का दूसरा निषेक बताएंगे, स्थिति सत्व के दूसरे समय में उदय आने योग्य द्रव्य प्रथम निषेक से हीन समय प्रबद्ध मात्र है। समय प्रबद्ध 6300, उसमें प्रथम निषेक 512, यानी ये दूसरे समय में उदय आने योग्य द्रव्य जो सत्ता में पड़ा है वो कितना है, 6300 माइनस 512। अब वो कैसे वो कहते हैं, प्रथम समय में जिस समय प्रबद्ध का प्रथम निषेक गलता है उसका तो दूसरा निषेक, और जिसका दूसरा निषेक गलता है उसका तीसरा निषेक, इत्यादि क्रम से दूसरे समय में जो निषेक उदय आने योग्य है वे सब मिलकर प्रथम निषेक से हीन समय प्रबद्ध मात्र होते हैं। इसके अर्थ ख्याल में आया, देखो हम ऐसा देखते हैं 6300 और 48 समय को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही निषेक हम बांधे थे एक समय प्रबद्ध में ऐसा मान लेते हैं, तो इसका ये उदय रूप है अभी पहले नंबर का 1 2 3 4 5 6, अभी इसके पूर्व समय में बंधे हुए एक समय उसका निकल गया है, उसका 2 नंबर का 3 4 5 6, किसी के 1 2 3 यानी ये 2 से शुरू हुआ, ये 3 से शुरू हुआ, ये 4 से शुरू, 4 5 6, किसी का 5 से शुरू हुआ, 5 और 6, और किसी का 6 नंबर का उदय रूप है, इसकी टोटल भी 1 to 6 है, एक समय प्रबद्ध है। अभी दूसरे निषेक की बात करें, ये दूसरा निषेक है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। इस सत्ता के दूसरे निषेक में 1 नंबर वाला है नहीं, ख्याल आवे ऐसी बात है नहीं। अब तीसरे में देखो, ये 3 से शुरू होता है, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, उसमें ना 1 नंबर का है ना 2 नंबर का है। इसलिए ऊपर चले जाओ, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 4 है, 5 है, 6 है, ये 5 और 6 है, और अंत में मात्र एक अंतिम 6 नंबर का निषेक। ये सत्ता की, अभी वर्तमान में सत्ता की रचना। आप कहेंगे फिर दोबारा बंधेगा, दुबेरा बंधेगा तो उसका भी नहीं, जब उसका उदय आना हो तो उसमें भी ऐसी रचना होगी। यानी सत्ता में इतने तो पड़े ही रहेंगे हमेशा, ये बात ख्याल में आती है ना। अब यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ यह सत्ता का द्वितीय निषेक है, यहाँ प्रथम निषेक मात्र चय घटता हुआ है, यहाँ चय जो है वो फिक्स नहीं है, उतना का उतना नहीं है। पहले से दूसरे निषेक में क्या कम है, तो पहला निषेक कम है, तो चय कितना है, तो पहले निषेक के जितना चय है, यानी यहाँ चय की वैल्यू 512 है। दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, 512 तो कम हुआ ही हुआ, 512 तो और प्लस 480 कम हुए। हमेशा हम क्या कहते हैं, चय की वैल्यू उतनी की उतनी कम करते, यहाँ वैसा नहीं है, एक एक निषेक एक एक चय है। यहाँ प्रथम निषेक मात्र चय घटता हुआ है, यानी प्रथम निषेक मात्र ने 512 मात्र चय घटता है। जैसे एक समय प्रबुद्ध का 480, दूसरे का 448 इत्यादि निषेकों का द्रव्य मिलकर 5788 होते हैं। हमने देखा था 6300 में से हमने 512 कम कर दिए थे। यहाँ प्रथम समय में जिसका अंत निषेक गल गया, उसका तो कोई निषेक रहा नहीं, जो हमने देखा था ना, जिसका भी 6 नंबर का गल गया, उस समय प्रबद्ध का कुछ नहीं रहा। यहाँ पर दूसरे निषेक में जिसके 2 निषेक थे वो अंत पर आ गया, परंतु जिसका अंतिम गल गया वो तो अभी है नहीं वहां पर। अब आगे, और जिसका प्रथम निषेक इस दूसरे समय में उदय रूप होगा, ऐसा समय प्रबद्ध बढ़ेगा तब उसका सत्व होगा, नया इस समय में है नहीं। क्या कहते हैं, कोई बंधेगा और उसका 512 नंबर का आएगा ना, इस समय वो नहीं, जब बंधेगा तब आएगा, तब उसकी बात करें, तो बाय द टाइम इसके ये भी निषेक गल जाएगा। तो हमेशा पोजीशन ऐसी रही, इसलिए सत्ता के द्वितीय निषेक का प्रमाण पूर्वोक्त जानना। पुनश्च स्थिति सत्व के तृतीय समय में उदय आने योग्य प्रथम और द्वितीय निषेक से हीन समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य है। अभी 6300 में क्या क्या कम करना, 512 भी और 480 भी, 2 निषेक कम कर देना। कैसे, वह कहते हैं, द्वितीय समय में जिसका द्वितीय निषेक गल गया, 480 वाला, अभी उसका तृतीय निषेक आएगा, उसका तीसरा निषेक, जिसका तीसरा निषेक गल गया उसका चौथा निषेक, इत्यादि क्रम से तीसरे समय में उदय आने योग्य है। हमने यहाँ भी देखा तीसरे समय में क्या था, यहाँ तीसरे निषेक से शुरुआत हुई, किसी के तीसरे निषेक से शुरुआत हुई, वहाँ पहले 2 है नहीं है, चौथे में जाएंगे चौथे से पहले 3 है नहीं है, जितना ऊपर ऊपर चले जाओ वहां तो पहला दूसरा तीसरा वो निषेक रहेगा नहीं, उतना उतना उसमें से हीन होता चला जाए। सर्व मिलकर प्रथम और द्वितीय निषेक से हीन समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य है। ये किसकी बात चल रही है, तीसरे की, वह सत्ता का तृतीय निषेक है। यहाँ द्वितीय निषेक मात्र चय घट गया, यानी दूसरे से तीसरे में कितना कम हुआ, द्वितीय चय मात्र, द्वितीय निषेक मात्र 480, जैसे एक समय प्रबुद्ध का 448, दूसरे का 416 इत्यादि मिलकर 5308 होते हैं, क्योंकि हमने 6300 में से क्या क्या माइनस किया, 512 को भी माइनस किया और 480 को भी माइनस किया, दोनों मिलाकर उसको माइनस कर दिया तो कितने आ गए 5308, 5308। अब आगे बढ़ते हैं, 38 पृष्ठ पर आए हैं। यहां भी पूर्ववत कारण जानना, इसी क्रम से यानी ऐसे एक 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 निशे घटते 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 स्थिति सत्व के अंत समय में उदय आने योग्य समय प्रबद्ध के अंत निषेक मात्र द्रव्य है। क्यों वह कहते हैं, क्योंकि यहां सत्ता में अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है उसकी बात, क्या कभी सत्ता में एक ही निषेक रहेगा, वो बात नहीं है। अभी ये सत्ता में सारे पड़े हैं, परंतु इस समय में उदय आने योग्य यही है, जब नए बंधेंगे तो उसके साथ और जुड़ते चले जाए। बाय द टाइम ये नीचे आएगा तो नए नए बंधे हुए उसके साथ आते रहेंगे। तो अभी इसमें एक ही द्रव्य एक ही निषेक क्यों है तो उसको बताते हैं। इस वर्तमान समय में जो सत्व द्रव्य है, सत्ता का जो द्रव्य है, उसमें स्थिति सत्व के अंत समय में समय प्रबुद्ध का एक अंत निषेक अवशेष रहेगा, रहेगा की बात है। किसी विशिष्ट समय प्रबुद्ध का यह अंतिम जिसका अभी पहला निषेक उदय रूप हो रहा है उसका अंतिम निषेक अकेला रह जाएगा, क्योंकि बाकी उसके पूर्व में बंधे हुए हैं तो पूर्व में खिर जाएंगे सब। अवशेष सर्व समयों में गलेंगे, जिनका आगामी काल में बंध होगा उन समय प्रबद्धों का उस समय में उदय आने योग्य निषेक होंगे, उनका अभी अस्तित्व नहीं है। अभी किसका अस्तित्व है उसकी बात चलेगी, वो जब बंधेंगे तब उसका अस्तित्व आ जाएगा, और उनका अस्तित्व होगा तो पूर्व के कितने और चले जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, वर्तमान में जो है ना स्थिति सत्व के अंत समय में समय प्रबद्ध का एक अंत अवशेष रहेगा, एक निशेष निषेक बाकी रहेगा, और अवशेष सर्व अवशेष सभी निषेक वो तो पूर्व समय में गल जाएंगे। इसलिए समय प्रबुद्ध का एक अंत निषेक मात्र ही सत्ता का अंत निषेक जानना, जैसे अभी हमारे उदाहरण में अंत निषेक के परमाणु 9 सत्ता में पड़ा हुआ, जो अंतिम सत्ता का अंतिम निषेक है वो 9 परमाणु, ये 9 तो हमने मान लिया हो, एक्चुअल में वो 9 परमाणु का कोई निषेक नहीं होगा वहां। इस प्रकार सत्ता के इन सर्व निषेकों को जोड़ देने पर किंचित कम डेढ़ गुणानिगुणित समय प्रबद्ध मात्र प्रमाण होता है, वही सत्व द्रव्य जानना। ये कितना होता है हमेशा हमने देखा था, किंचित कम डेढ़ गुणहानि, कभी भी समय प्रबद्ध सत्ता में कितना द्रव्य पड़ा रहेगा, एक समय प्रबद्ध जो हम 6300 देख रहे हैं उसको डेढ़ गुना आने से गुना करे इतना सारा ही टोटल द्रव्य होता। जैसे 6300 और 5788 इत्यादि एक एक निषेक से हीन क्रम सहित सत्ता के निषेक लिखकर उनका जोड़ देने पर गुणहानि आयाम 8, उसका डेढ़ गुना 12, उसमें से कुछ कम करके उससे समय प्रबद्ध का प्रमाण 6300 को गुणा करने पर 71304 होते हैं। ये हमने पहले देखा था कैसे लाना है उसका प्रमाण, एक एक गुणहानि का कैसा उसमें हिसाब लगाना, क्या करना, ऋण द्रव्य वो सब बहुत जमेला किया था हमने, अर्थ संदृष्टि में भी देखा था, जीव कांड में भी और कर्म कांड में अभी अभी देखा था। यह कथन त्रिकोण यंत्र की रचना द्वारा गोमरसार में दिखाया वह जानना, पहले हमने देख चुके। इस प्रकार स्थिति सत्व के निषेकों का द्रव्य स्वयं सिद्ध तो ऐसे क्रमयुक्त जानना, स्वयं सिद्ध ने अभी उसमें कोई उलट पुलट नहीं होते तो इस तरह से जानना ये कहते हैं। पुनश्च यदि उत्कर्षण अपकर्षण गुण श्रेणी संक्रमण आदि के कारण अन्य निषेकों का द्रव्य अन्य निषेकों में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य प्रकृति का द्रव्य अन्य प्रकृति में प्राप्त हुआ हो तो वहाँ यथासंभव आय द्रव्य की अधिकता और वे द्रव्य की हीनता करने पर जिस प्रमाण युक्त पाया जाए उस प्रमाण युक्त सत्ता के निषेकों की रचना जानना। क्या कहना चाहते हैं? ये तो सामान्य से बात बताई, परंतु अपकर्षण भी होता है उत्कर्षण होता है पर प्रकृति रूप होता है। जैसे मिथ्यात्व की क्षपना करते मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप हो जाएगा। तो जहाँ जो है कितना द्रव्य दिया जाता है बाहर जाता है और कितना आ मिलता है उसके अनुसार वहाँ इनकी रचना होगी, सत्ता की रचना होगी। लौकिक में अभी आय द्रव्य व्यय द्रव्य क्या है उसको बता रहे हैं। लौकिक में जैसे जमा खर्च कहते हैं वैसे यहाँ विवक्षित में यानी किसी पर्टिकुलर प्रकृति में अन्य परमाणु आ मिले उसका नाम आय द्रव्य है। जैसे नीचे के निषेकों में ऊपर से आए तो कहेंगे आय द्रव्य और उस निषेक का उसके भी नीचे चला जाए उसको कहेंगे व्यय द्रव्य। विवक्षित में से परमाणु निकलकर अन्यत्र प्राप्त हुए उसका नाम व्यय द्रव्य है। यानी किसी निषेक में से सभी परमाणु तो कुछ तो नए आते हैं कुछ यहाँ से चले जाते हैं तो फाइनल जो रहेगा उसका वो उस निषेक का प्रमाण होगा। विशेष इतना है कि जहाँ निषेकों का द्रव्य चयहीन क्रम से निकलता है जैसे निषेकों के द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देकर एक भाग ग्रहण किया वहाँ पहले निषेकों का सत्व जैसे चयहीन क्रम से युक्त था वैसे ही चयहीन क्रम युक्त द्रव्य का ग्रहण हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा था ना कि पहले इस तरह से द्रव्य था निषेकों की रचना थी और इन सब में से अपकर्षण द्रव्य हुआ निकला गया। तो किस तरह से निकला गया? तो निषेक कैसे थे? तो चयहीन थे। तो जो जो अपना अपना निषेक का प्रमाण है उसमें से उस प्रोपोर्शन में परमाणु निकलेंगे तो परमाणु निकलेंगे तो भी चयहीन क्रम से निकलेंगे और फिर उसका जैसा दिया जाने वाले द्रव्य का तो हमने प्रमाण देख लिया है। पुनश्च जहां निषेकों में चयहीन क्रमयुक्त द्रव्य मिलाया अभी वो निकाला हुआ द्रव्य फिर घटते क्रम से दिया है हमने चयहीन क्रम से दिया है जैसे उदयावली आदि के निषेक पहले से ही चयहीन क्रमयुक्त थे उनमें चयहीन क्रम से ही द्रव्य दिया। क्या कहते हैं? यहाँ सर्वत्र से निकाला फिर उदयावली में कैसे दिया? वो ऑलरेडी क्रमहीन थे और उसमें जो एक्स्ट्रा मिलाया है वो भी क्रमहीन मिलाया इस तरह से तो फाइनल रिजल्ट भी क्रमहीन ही दिखेगा। वहां तो आय और व्यय होते हुए भी यथासंभव चयहीन अनुक्रम रहता है। क्या कहना चाहते हैं? अब ये ऊपर के निषेकों में अपने अपने नीचे सर्वत्र द्रव्य दिया जाएगा बीच वाले निषेकों में क्या होता है ऊपर से भी द्रव्य इसमें आता है इसमें से भी नीचे भी चला जाता है फिर भी फाइनल रिजल्ट ऑलवेज गोपुच्छा होगी चयहीन क्रम से ही द्रव्य वहां पाया जाएगा। कितना आय और व्यय कैसे भी हो वो सब सेटल हो जाता है और वो फाइनल रिजल्ट इस तरह से हो जाता है। जहां निषेकों का द्रव्य हीनादि क्रम से ग्रहण करते हैं या कई निषेकों का द्रव्य ग्रहण करते हैं कई निषेकों का नहीं ग्रहण करते और जहां हीनादि क्रम से या गुणकार क्रम से द्रव्य दिया हो वहां यदि निकला हुआ या मिलाया हुआ द्रव्य अल्प हो और सत्व द्रव्य बहुत हो तो यथासंभव चयहीन क्रम रहता है और यदि निकला हुआ या मिलाया हुआ द्रव्य बहुत हो और सत्व द्रव्य अल्प हो तो वहाँ चयहीन क्रम नहीं रहता। अब कहाँ नहीं रहता कहाँ इतना द्रव्य निकलता है वो तो बात जब वहाँ उसका नंबर आएगा तब देखेंगे। क्या क्या होता है उसकी सामान्य से यहाँ चर्चा चल रही है। पुनश्च अनुभाग सत्व में वर्गणाओं का प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार से लाना और वर्गणाओं में से यथासंभव द्रव्य निकाले या मिलाए वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से चयहीन क्रम का रहना या न रहना जानना। जैसे निषेकों में हमने देखा था उसका चयहीन क्रम से होता है, वैसे वर्गणाओं में भी चयहीन क्रम से होता है। अनिवृत्तिकरण में ये नवे गुणस्थान का नाम है, अपूर्व स्पर्धक और कृष्टियों का नवीन सत्व होता है उसका विधान वहां अवसर आने पर लिखेंगे वह जानना। अभी समझाने से कुछ नहीं समझेंगे, इस तरह सत्व द्रव्य में क्रम जानना, ये सत्ता के रूप द्रव्य की बात बताई। इस प्रकार यहाँ द्रव्य देने आदि में विधान कहा है, यहाँ जो यह कथन किया है उसको अच्छी तरह से याद रखना। यदि इस कथन का स्मरण होगा तो आगे ग्रंथ में अच्छी तरह से प्रवेश होगा और अर्थ को अच्छी तरह से यानी स्पष्ट पहचानोगे, इसीलिए पहले यह कुछ कथन किया है। देखो उन्होंने कितनी मेहनत ली है कि पूरा उसका मर्म यहाँ समझा दिया है। जिसका यहाँ व्याख्यान किया है उसका प्रयोजन ग्रंथ में जहाँ आता है वहाँ कथन किया उसके अनुसार स्वरूप जानना। सर्व व्याख्यान तो आगे ग्रंथ में होगा ही, इस तरह पीठ बंद किया। हम भी जहाँ जो विषय आता है उसको दोबारा यहाँ रेफरेंस लेंगे, याद करेंगे। अब कर्तव्य का प्रारंभ करते हैं। आगे चामुंडराय नामक राजा के प्रश्न के कारण कषाय प्रावृत जिसका द्वितीय नाम जयदवल है उसके 15 अधिकार में से पश्चिम स्कंद नामक 15वें अधिकार के अर्थ को ग्रहण करके श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धिसार नामक ग्रंथ की रचना की। ये जो 16 पुस्तकें हैं तो उसमें 15 अर्थाधिकार तो 15 है, पुस्तक तो फिर 15-16 दोनों में मिलकर ये सारे क्षपणा का वर्णन आता है। उसके सूत्रों का संक्षेप मात्र अर्थ लिखते हैं। वहाँ प्रथम लब्धिसार टीका के अनुसार कितने ही सूत्रों का अर्थ लिखते हैं, टीका में विस्तार से व्याख्यान है, यहाँ ग्रंथ बढ़ने के भय से संकोच रूप व्याख्यान करते हैं, जिसका कल से क्रम से प्रारंभ होगा, हम पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।